ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्भुधीरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिभावतिनिष्ठके भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत दूसरे दिन की हरि कथा एवं कीर्तन में सभी भक्तों एवं माताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान के महान भक्त जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी ने भी किया है, अनंत अनंत कथाओं में से वेदव्यास जी ने कुछ चुनिंदा कथाओं को श्रीमद् भागवत में लिया है। उनमें अम्बरीश महाराज जी का वर्णन भी आता है, तो आज हम महाराज अम्बरीश के जीवन चरित्र के विषय में सुनते हैं। और महाराज अम्बरीश की सबसे छोटी रानी, उनका जीवन चरित्र भी सुनने का प्रयास करते हैं। महाराज अम्बरीश भगवान के एक महान भक्त हो गए, विशेष करके उनका नाम नवदा भक्ति का पालन करने में आता है। पूर्ण रूप से नवदा भक्ति का पालन करते थे। वैवस्वत मनु के पुत्र हुए थे नवाग, और नवाग के पुत्र हुए थे राजर्षि महाभाग, और उनके पुत्र हुए थे अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज जी का जन्म बड़ा विशिष्ट था। उनके माता पिता ने कई लंबे अरसे तक पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास किया, फिर भगवान की आराधना भी की थी उन्होंने, और भगवान की आराधना करने के बाद जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो भगवान से पुत्र की याचना करते हैं। तो जब भगवान प्रकट होते हैं ना, तो उनकी जो माता होती है उनको बुलाते अम्ब, तो वो कहती है कौन बोला, कहते ईश, ईश्वर भगवान खुद। तो ये दोनों शब्द भगवान ही बोले थे, अम्ब और ईश। फिर भगवान प्रकट हुए और फिर वार्तालाप हुआ, तो भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि मैं ही तुम्हारे वहां पर पुत्र के रूप में प्रकट हो जाऊंगा, एक अंश रूप में प्रकट हो जाऊंगा भक्त भाव में। तो जब वो प्रकट हुए तो उनका नाम अम्बरीश रख दिया गया, अम्बरीश। भगवान ने जो दो पहले शब्द बताए थे उन्हीं दो शब्दों को इकट्ठा कर दिया। तो महाराज अम्बरीश साधारण प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं थे, राजर्षि थे, राजा होने के बावजूद भी जीवन उनका पूर्ण साधुमय था और राजकीय वैभव प्रायः राजा लोग रजोगुण से प्रभावित होते हैं। व्यक्ति के पास सामान्य द्रव्य आ जाए ना तो भी व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। छोटे बालक के पास कोई अच्छा खिलौना आ जाए तो भी वो उससे प्रभावित हो जाता है, दिखाता है सबको। इतनी बड़ी सामर्थ्य प्राप्त करने के बावजूद भी स्थिर बुद्धि बनाकर रखना ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। जो तो भगवान का महान भक्त हो वही कर सकता है। तो महाराज अम्बरीश अपने मन को, अपने शरीर को, समस्त इंद्रियों को पूरी पूरी मात्रा में भगवान के लिए खर्च करते थे और उसमें विशेष ध्यान ये भी रखते थे कि सारी सेवा खुद करें, बोलकर कराई जाती है, खुद भी की जाती है। वो रुचि लगते थे कि खुद ही करे सारी सेवा। को अपने महल में उन्होंने भगवान के विग्रहों की स्थापना की थी और उस महल में एक दूसरी कोई रानी नहीं रहती थी, वो ही रहते थे और साथ में राजकीय कर्मचारी के लोग रहते थे। तो नियमित रूप से नवदा भक्ति के सारे अंगों का पालन और पूर्णतया अपना शरीर और मन भगवान में लगा रहे उसका पालन करते थे। के हाथों को भगवान के मंदिर की सफाई में लगाना, पैरों को भगवान के लिए कोई कार्य करने जाना या यात्रा करने जाना, मुख को भगवान के नाम में लगाना, प्रसाद खाने में लगाना, आंखों को भगवान के ही दर्शन करने में लगाना, कानों को भगवान के कीर्तन सुनने में लगाना, कथा सुनने में लगाना, त्वचा को हरि भक्तों का स्पर्श करने में भगवान के विग्रहों को स्पर्श करने में लगाना, मन को सदैव भगवान के चिंतन में लगाना, समस्त इंद्रियों से उनका यही भाव बना रहता कि भगवत सेवा करें, कोई भी इंद्रिय खाली नहीं जानी चाहिए, ऐसा उनका प्रयास होता था हमेशा। और इस प्रयास को करने में नवदा भक्ति के जो नौ मार्ग होते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवनम अर्चनम वंदन दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, नौ के नौ मार्ग एक दिन में पूरे कर लेते थे। प्रायः कोई भक्त श्रवण में प्रधान होता है, कोई कीर्तन में प्रधान होता है, कोई वंदन में, कोई आत्मनिवेदन में, अलग अलग उनकी विशेषताएं होती है। और कोई भी एक अंग का पालन करे जीव तो भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। अब सोचिए जब नौ के नौ अंगों का पालन करने वाला कोई भक्त होगा वो भगवान की कितनी कृपाओं को प्राप्त कर जाएगा। इसलिए कहते अम्बरीश जैसे महान राजा मिलना दुर्लभ है। इसलिए उनकी देखा देखी उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। योग्यता के बगैर जब व्यक्ति अंधा अनुकरण करता है तो जिस पथ का अनुकरण करता है ना उसी से ही दुखी होता है बाद में। जैसे कोई हरिदास ठाकुर जी का अनुकरण करे कि 300,000 नाम हरिनाम रोज करे, करते 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 ऐसी अवस्था आ जाएगी कि वो हरिनाम से ही दुखी हो जाएगा, बाद में फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी उसको, क्योंकि उसका अधिकार नहीं है इतनी मात्रा में हरि भक्ति को कर पाना, आध्यात्मिककरण को ग्रहण कर पाना। इसलिए व्यक्ति को गुरुजनों के मार्गदर्शन में अपनी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए भक्ति मार्ग में प्रयास करना चाहिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए या शीघ्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए जंप मारने से भक्ति सार्थक नहीं हो जाती है। तो एक प्रसंग आता है, एक धनी व्यक्ति ने अपने घर में कौवा पाल के रखा हुआ था। धनी था इसलिए कौवे को खूब खिलाता पिलाता था, और कौवे का दूसरा कोई काम नहीं था, खा खा के मोटा हो गया था। जब व्यक्ति खाता रहता है तो कहीं ना कहीं तो लगेगा ना, वो खा खा के मोटा हो गया था, और उसके साथ साथ उसके अंदर अहंकार भी आ गया था। बड़ा बलवान हूं मैं, अहंकार भी आ गया था। अब धनी व्यक्ति के घर रहता है तो अपने आप अंदर भी अहम आ जाता है। तो वहां पर देव संयोग से समुद्र के किनारे एक दिन भ्रमण करते करते मानसरोवर से कुछ हंस वहां पर पहुंच गए। हंस बड़ी शांत प्रकृति के होते हैं, और वो वहां पर पहुंच गए। कौए ने जब हंस को देखा, ईर्ष्या तो हुई और अहंकार भी था, इसलिए इन हंसों को कहता है, आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते। हंस कहते हैं, हमने बराबरी करनी नहीं। अरे करनी हो तो भी नहीं कर सकते आप मेरी बराबरी। मैं कितनी कितनी प्रकार से उड़ना जानता हूं बताया तुमको, तुम कितने प्रकार से उड़ना जानते हो बताओ। हंस कहते हैं, हमारी एक ही गति है, हमको एक ही प्रकार से उड़ना आता है बस। कौवा कहता है, इतना ही, मैं बहुत अलग अलग प्रकार से उड़ सकता हूं, दिखाओ क्या कंपटीशन करनी है क्या। हंस को कोई रुचि नहीं है, लेकिन कौवा जबरदस्ती कर रहा है। हंस कहते, ठीक है चलते हैं। फिर कौन सी दिशा की तरफ चले? कहते, समुद्र के अंदर की दिशा की तरफ चलते हैं। हंसों का अभ्यास होता है लंबी उड़ान भरने का। कौए को अहंकार के कारण ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए तो बड़ी सामान्य बात है। अहंकार में अपने व्यक्ति विवेक शक्ति भूल जाता है, उसको ध्यान नहीं रहता कि वास्तव में वो है कितना। अब चल पड़े कंपटीशन में। हंस अपने स्वाभाविक जो उड़ान है उसी के अनुरूप चल रहे हैं। कौए ने क्या किया, पहले तो इंप्रेशन कर जमाने के लिए उसने अलग अलग तरीके से उड़ान भरना शुरू कर दिया। अब काफी समुद्र में अंदर तक पहुंच गए। हंसों के आगे आगे तेज गति से भाग रहा है वो। फिर धीरे 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 थकावट हो रही है। अब वहां कहीं लैंडिंग करने के लिए तो, रुकने के लिए तो कोई स्थान नहीं है, रुके कहां पर। अब धीरे 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 नीचे 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 आता जा रहा है। बड़ा जोर मार के फिर थोड़ा ऊपर होता है, फिर पानी लग जाता है, फिर थोड़ा जोर मार के ऊपर होता है। अब सांस फूल रही है, हंस आगे निकल गए। हंसों को दया आ गई। अच्छे साधुओं की उपमा भी हंसों से दी जाती है, परमहंस। उनका स्वभाव बड़ा अच्छा होता है। उनको दया आ गई, वापिस आए। कहते, ये कौन सी उड़ान है, ये आपकी कौन सी स्टाइल है उड़ान भरने की? कहते, ये हमारी अहम की स्टाइल है उड़ान भरने की। अभी हम कितने पानी में है ये हम जान चुके हैं। हंस कहते, क्या आपकी इच्छा है? कहते, बस प्राण रक्षा हो जाए उतना ही पर्याप्त है अभी तो। हंसों ने कृपा करके उसको बिठाया अपने ऊपर, और जहां तटता वहीं छोड़ के फिर वहां से निकल गए। तो बिना धक्का लगे व्यक्ति का अहंकार है ना, वो जाता नहीं कभी। धक्का लगने से जाता है, चेतना खुलती है। वैसे चेतना नहीं खुलती क्योंकि अहंकार का पर्दा होता है। तो कहते, अम्बरीश महाराज इतने महान थे और अम्बरीश जी कर रहे थे, हम भी कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अम्बरीश जी की चेतना भगवान के चरणों में स्वाभाविक लगी हुई है। हम जोर लगा लगा कर कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ा समय ही कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसलिए महान वैष्णव के चरणों में प्रार्थना की जाती है, ना कि उनका अनुकरण किया जाता है। उन्होंने इस स्थान पर को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबा अरसा गुजार दिया है। हम भक्ति मार्ग में अभी शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हमने हमारी अवस्था को ध्यान में रखते हुए और गुरुजनों के मार्गदर्शन में प्रयास करना चाहिए। अमरीश महाराज तो अपने ही महल में रह के सेवा करते थे, वो तो किसी को कहने नहीं जाते थे, लेकिन फिर भी अमरीश महाराज की ख्याति सर्वत्र फैली हुई थी। अभी तो मीडिया आ गया तो जबरदस्ती ख्याति फैलाते हैं, लेकिन अमरीश महाराज जी का ऐसा नहीं था, स्वाभाविक उनकी ख्याति फैल रही थी। तो साधु संत लोग इकट्ठे हुए और इन सब ख्यातियों को फैलाने में नारद मुनि का बड़ा हाथ रहता है। कहते नारद जी आग लगाते, नारद जी वास्तव में आग लगाते हैं, लेकिन नारद जी भक्ति की आग लगाते हैं, व्यक्ति के हृदय में भक्ति जलाते हैं। वो संसार की माया रूपी आग नहीं जलाते कि जिसमें व्यक्ति दुखी हो जाए, इसलिए नारद मुनि मौके का फायदा लेते हैं। कभी कभी प्रयाग में सभी साधु संत स्नान करने आए, दुर्वासा ऋषि को देख कर नारद मुनि पहुंच गए दुर्वासा ऋषि के पास। आज के समय के बड़े संत, राजा के रूप में इतने बड़े महान संत ना कि संत लोग भी उनकी पूजा करें, ऐसे संत। दुर्वासा ऋषि सोचने लगे कि एक राजा इतना बड़ा हो सकता है महान? हम लोग तो वैराग्य जीवन जीते हैं, राजा का तो भोगी जीवन होता है, अनेक रानियां होती है, खाना पीना अनेक ऐश्वर्य होता है, वो हमारे जैसा वैरागी नहीं होने के बावजूद भी महान कैसे हो सकता है? अब दुर्वासा ऋषि को ये बात बराबर हजम नहीं हो रही। अब नारद मुनि ने क्या किया, दुर्वासा ऋषि के हृदय में बीज डाल दिया और वो बीज अंदर जम गया और हलचल मचा रहा है। अभी इस घटना में भगवान ने और लीलाओं की रचना कर दी। जहां जहां दुर्वासा मुनि उसके बाद गए, अपने आप स्वाभाविक रूप से उनको कहीं ना कहीं अमरीश महाराज जी के विषय में सुनने को मिल ही जाता था। दुर्वासा ऋषि सोचे ये क्या बात है, एक राजा की इतनी प्रशंसा कर रहे, साधु लोग भी प्रशंसा कर रहे, ये क्या बात है? अब दुर्वासा ऋषि को लगा कि इतना बड़ा भक्त तो हो नहीं सकता, ये तो मानने में नहीं आ रहा है, देखना तो पड़ेगा फिर। तो महाराज अमरीश तो वास्तव में ही बड़े महान थे। महाराज अमरीश हर कार्य को, हर तिथि त्यौहार को बड़े सम्मान के साथ और यत्न पूर्वक किया करते थे। उसमें भी एकादशी को तो वो बड़ा विशेष ध्यान रखते थे। इतनी भक्ति संपन्न व्यक्ति थे, लेकिन एकादशी जैसी तिथि को पूर्ण निर्जल उपवास करते थे और दिन भर भगवान की सेवा में लगे रहते थे। द्वादशी के दिन दान दक्षिणा आदि करके, साधु संतों की सेवा आदि करके फिर पारण करते थे। तो दुर्वासा ऋषि का तो नित्य क्रम हुआ करता था भक्ति करने का। दुर्वासा ऋषि का एक दिन आगमन हुआ और वो द्वादशी की सवेरे का समय था। कहते आज जाके देख ही लेते कितने बड़े महान हैं। दुर्वासा ऋषि को आया जानकर सर्वप्रथम एक शिष्टाचार के तहत अमरीश महाराज दुर्वासा ऋषि का स्वागत करने के लिए खुद बाहर तक गए। एक अच्छा संत आया है तो उनका स्वागत करना चाहिए। और दुर्वासा ऋषि भी वैसे बड़े फेमस है डांट फटकार लगाने में। कहते दुर्वासा ऋषि इतनी डांट फटकार लगाते थे ना, है तो शिव जी के यंश, कहते शिव जी के अंदर एक गुण है कि शिव जी स्मशान की बबूती लगा कर रहते हमेशा, ऐसे अमंगल वेशों को धारण करके रहते हैं, उनको तो कोई अमंगल लगता नहीं है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोई भी भौतिक चीजें उनकी तरफ आकर्षित आती नहीं, फिर वो बच जाते उनसे। दुर्वासा मुनि भी इस प्रकार से डांटते फटकारते रहते थे ना, तो संसारिक व्यक्तियों का साहस नहीं होता था उनके पास जाए, उनसे कुछ पूछे, उनसे कुछ मांगे, कुछ बातचीत विचार विमर्श करे, कोई जाता ही नहीं था। कहते गए, कुछ बातचीत की, गलती हो गई तो श्राप दे देंगे, तो ऐसे अच्छा जहां जी रहे वैसे ठीक है, कुछ नहीं ज्यादा मिलेगा तो चलेगा। इसके कारण भी संसार के लोग या मायावी लोग दुर्वासा ऋषि से दूर ही रहते थे, ये भी दुर्वासा ऋषि के लिए एक प्लस पॉइंट था। लेकिन हमेशा डांटते ही रहते थे, बड़ा क्रोधी प्रकृति का स्वभाव था उनका, और थे भी अच्छे भक्त भी। तो एक ही कार्य को जीवन भर किया है, दूसरा पहलू देखने को मिला ही नहीं कभी जीवन में। अभी क्या हुआ, शेर के माथे सवा शेर कभी आया ही नहीं, तो प्रकृति बराबर बनी हुई थी। अब महाराज अमरीश जी के वहां पहुंच गए द्वादशी के दिन सवेरे सवेरे। अरे महाराज, हम आज अतिथि सत्कार आप ही के यहां पर करेंगे, हम स्नान आदि करके निवृत्त होकर आते हैं, आप भोजन का प्रबंध कीजिए। कहते जो आज्ञा। महाराज अमरीश तैयार है, व्यवस्था शुरू हो गई है। दुर्वासा ऋषि परीक्षा लेने के लिए जानकर विलंब कर रहे हैं। एकादशी पारण करने का समय बिल्कुल कगार पर आ चुका है पूर्णाहुति के, और दुर्वासा ऋषि का आगमन नहीं हो रहा है। अब अमरीश महाराज सोच रहे हैं कि इतने इतने वर्षों से एकादशी के नियम का पालन कर रहे हैं, घर में साधु आया है उसको खिलाकर खाना ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। उसको बिना खिलाए खाना वो तो उचित नहीं है, लेकिन उसको अगर छोड़ देते हैं एकादशी का पालन कर लेते हैं और उनको जानकारी हो गई तो उनको बड़ा दुख लगेगा। फिर एकादशी भी नहीं छोड़नी, साधु का भी सम्मान करके रखना है, क्या करें फिर आखिर में। तो एक राजा जब अपने जीवन काल में ऐसे विडंबनाओं में होता है, तब वो श्रेष्ठ ब्राह्मण या गुरु वर्ग के जो लोग होते हैं उनसे सलाह मशवरा करता है। इसलिए हमेशा राजा लोग अपने राज्य में ऐसे विद्वानों को हमेशा स्थान देते हैं और उनके मार्गदर्शन का पालन भी करते हैं। राजा ने भी परामर्श किया, एकादशी तिथि पूर्ण भी हो जाए और आगंतुक वैष्णव संत जो है किसी भी प्रकार से उनका अपमान भी ना हो, उसके लिए क्या किया जाए। एक मत से ब्राह्मणों ने सुझाव दिया, महाराज इसके लिए क्या करिए, इसके लिए आप एक काम करिए, थोड़ा सा अगर चरणामृत ले लेंगे ना, तो थोड़ा सा चरणामृत लेने पर आपने कुछ ग्रहण किया ऐसा नहीं माना जाता, क्योंकि चरणामृत कोई साधारण ऐसा कोई भोग्य पदार्थ नहीं है कि आपने कुछ ग्रहण किया ऐसा माना जाएगा, और एकादशी का पारण भी हो जाएगा, क्योंकि एक बूंद चरणामृत जाएगा तो भी आपके निर्जल व्रत भंग हो जाएगा और एकादशी पूर्ण हो जाएगी, पारण हो जाएगा। अमरीश जी ने बस उतना ही किया और दुर्वासा ऋषि रात देखकर बैठे थे, जो चरणामृत पिया और खड़े हो गए आगे, घोर अपमान, इतना बड़ा साधु है, इतना बड़ा महान वैष्णव बनता है, घर में साधु है उनको भूखा रख के खुद भोजन कर रहा है, एक बूंद मात्र चरणामृत लिया, कहां भोजन किया इसमें, वो भी इतना विचार विमर्श करते डरते डरते। उतने में तो दुर्वासा ऋषि ने इतनी खरी खोटी सुना दी उनको, इतनी खरी खोटी सुनाने के बावजूद भी अमरीश महाराज जी का स्वभाव ऐसा था, शांत प्रकृति का, कोई उत्तर नहीं दिया, शांत खड़े हैं, कुछ बोले ही नहीं। ये अकेले अपने तरफ से बोले जा रहे, उन्होंने खुद निर्णय भी कर लिया कि अपराध हो गया और खुद निर्णय भी कर लिया कि अपराध का दंड क्या देना चाहिए। बिना अपराध होने के बावजूद भी अपराध घोषित करके उसका दंड भी निर्णय कर लिया उन्होंने, तो अभी अम्बरीश महाराज शांत है। इन्होंने वहां पर जटा तोड़ के कृत्या प्रकट कर दी। जो ही कृत्या प्रकट की, भयंकर आग की लपटों से कृत्या अम्बरीश महाराज जी की तरफ आ रही है। अम्बरीश महाराज तो भगवान के प्रति आश्रित हाथ जोड़कर खड़े हैं। कहते जिस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया हो, अम्बरीश जी ने कर दिया था, तब से भगवान कृष्ण ने सुदर्शन जी को अम्बरीश जी की रक्षा के लिए पहले नियुक्त कर दिया है। जब अम्बरीश जी ने जब अपना सर्वस्व अर्पण किया है ना, तभी से सुदर्शन चक्र जी उनके मदद में हमेशा रहते हैं। वो महल के बाहर भी ना निकले तो भी बराबर राज्य चलता रहेगा, बराबर राज्य की रक्षा होती रहेगी, उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, युद्ध नहीं करने जाएंगे तो भी सब सुरक्षित रहेगा। भगवान ने तो योजना पहले से बना रखी हुई है, व्यवस्था करके रखी हुई है, बस सुदर्शन जी दिखते नहीं लेकिन उनकी रक्षा में काम हो रहा है सारा। यहां जब अम्बरीश महाराज जी के ऊपर आन पड़ी है ना, उन्होंने सुदर्शन जी को बुलाया तक नहीं, भगवान से रिक्वेस्ट भी नहीं की, प्रभु मेरा तो कोई अपराध नहीं, ये बेवजह मुझे डांट रहे, मुझे मारने का प्रयास किया जा रहा है, एक बुन चरणामृत प्रिया उसमें सीधा वध कर दे रहे मेरा, इतना भी उन्होंने कोई भगवान से रिक्वेस्ट नहीं की कि प्रभु आप कुछ कृपा कीजिए, बिल्कुल खड़े है, जो है सब मंजूर है। शरणागति में एक ये भी बात है कि गाय अगर खूंटे से बंधी हुई है, मालिक जब भोजन देगा तब खा लेंगे, नहीं देगा तो भूखे सो जाएंगे, शरणागति का भाव है। अलग से प्रयास नहीं, अलग से प्रयास का मतलब होता है कि शरणागति नहीं है, इसलिए अलग से प्रयास नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा, पूर्ण शरणागति के लक्षण है। भगवान ने सुदर्शन चक्र जी को भेज दिया अम्बरीश जी की रक्षा करने के लिए। अब भक्तों की मदद करनी है तो सुदर्शन चक्र जी भी बड़ा जोर शोर से कर रहे प्रयास। भगवान की सेवा तो करता ही करता हो, ये तो भगवान के निजी है, भगवान के अपने निकट के लोग है, प्रियजन है, इसमें तो मेरे को पूरी शक्ति से काम करना पड़ेगा। सुदर्शन चक्र जी आए, कुछ समझ नहीं रहा है, अचानक आए से प्रकट हो गए, आए भयंकर तीव्रता के साथ, गति उनकी ऐसी है कि कुछ दिख नहीं रहा है, उनके अंदर भी से ताप निकल रहा है। कृत्या तो मरी मरी, दुर्वासा ऋषि भी मन की गति से भाग सकते इधर उधर। दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन चक्र लग गया। कहते इतने बड़े ऋषि, तपस्वी प्रकृति के व्यक्ति है, वैरागी संत है, उनके पीछे सुदर्शन जी क्यों लग गया। कहते सुदर्शन जी का काम है भक्तों की रक्षा करना, अपमान नहीं होने के बावजूद भी दुर्वासा ऋषि जी ने दंड दिया, ये अपमान दुर्वासा ऋषि जी ने कर दिया। अम्बरीश जी ने तो कोई अपमान नहीं, अपराध नहीं किया, लेकिन अभी अपराध दुर्वासा ऋषि जी ने कर दिया। अब सुदर्शन जी उनको भयंकर यातना दे रहे और वो उनकी यातना से बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे और सर्वत्र इधर उधर घूम रहे, भगवान से प्रार्थना करते हुए सभी जगहों पर पहले याचना कर रहे कि मेरी मदद करो, कोई तो मुझे बचाओ, देवता की तो क्षमता नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी के पास गए थे वो। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु एक इच्छा मात्र से मेरा जन्म कर देते हैं और द्विपराध तक मेरा जीवन चप चक चलता रहता है और फिर उनका मूड आता है तो सारे सृष्टि का विलय भी कर देते हैं। मेरा तो जन्म और मेरा तो शरीर त्यागना उनकी इच्छा के ऊपर टिक जाता मात्र है, इसमें मेरा रोल कितना है बताओ। वो इच्छा करते हैं मैं उनके नाभि से प्रकट हो जाता हूँ, वो इच्छा करते हैं चलता पूरा हरा ये ब्रह्मांड पूरा विलीन कर लेते हैं, हमसे पूछते नहीं, हमारी एक नहीं उनके सामने कोई चलने वाली, ऐसा उनके सामने हम है ही क्या? जो हम आपको आश्वासन दे के उन्हीं के द्वारा भेजा गया सुदर्शन चक्र से हम आपकी क्या मदद करें, आप बताइए। ब्रह्मा जी ने अपने आप को इतना ज्यादा हेल्पलेस बताया वहां पर कि दुर्वासा ऋषि की आंखें खुल गई कि अपने आप को इतना निम्न अवस्था का बता रहे भगवान के सामने। जब शिव जी के पास गए तो शिव जी ने भी इसी प्रकार के भावों को व्यक्त किया, कहते भगवान की इच्छा मात्र से तो मैं इस माया की सृष्टि का निर्माण करने के लिए एक निमित्त मात्र बनता हूं, कहने के लिए मुझे प्रलय करने की रखा है। मूल पर प्रलय तो कहते प्रभु ही करते हैं, मुझे तो एक डिपार्टमेंट के तौर पर नाम मात्र दे रखा है, मैं तो हमेशा उनकी आराधना में लगा रहता हूं और उनके द्वारा भेजे गए चक्र से मैं क्या आपकी मदद करूंगा, आप बताइए। जब शिव जी ने अपने आप को हेल्पलेस बताया ना, तब उनको लगा कि जिनका चक्र है उन्हीं के पास ना चला जाए, उनको दया आएगी तो शायद हो सकता है छोड़ दे। सशरीर से वैकुंठ तक जाने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति आज इतने कष्ट में है, भगवान के दर्शन कर रहे, बातचीत कर रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भयंकर कष्ट में है क्योंकि उन्होंने एक भक्त अपराध कर दिया। भगवान खुद कहते कि मेरे भक्त मेरे से भी बढ़कर है, और अहम भक्त पराधीना, भगवान अपने भक्तों के पराधीन भी है। ऐसे भक्तों के प्रति अपराध कर दिया दुर्वासा ऋषि जी ने। दुर्वासा ऋषि जी ने भगवान के समक्ष तीन बातों का वर्णन किया, आप तो सभी के रक्षक हैं, और जो आर तो होते हैं ना, जो दुखियारे होते हैं उनकी मदद करते हैं, उनके आर्तों को नाश करते हैं, और ब्राह्मणों के ऊपर तो विशेष अनुग्रह करते, ब्राह्मण्य देव भी है। देखा जाए तो मेरे को भी तीनों चीज लगी हुई है, मुझे सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता है आपकी कृपा की। मैं ब्राह्मण भी हूं, दुखी भी हूं, मेरी रक्षा करो प्रभु। भगवान कहते ये बात निश्चित सही है कि मैं सब कुछ करता हूं, मेरे में अनेक गुण, ये भी बात सही है, लेकिन इन सबके ऊपर भी मेरी एक और भी प्रतिज्ञा, एक और भी गुण है कि ये सारे के सारे गुण मेरे जो शरणागत भक्त है उनके प्रति जो मेरी वात्सल्यता प्रकट जब होती है ना, उसमें सारे गुण पीछे रह जाते, एक ही गुण आगे आता है, भक्त वात्सल्यता, और उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, सब कुछ त्याग सकता हूँ, धर्म का अधर्म कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, मेरी भक्त वात्सल्यता संभालने के लिए मैं अपना वचन भी तोड़ सकता हूँ, चोरी भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ एक वचन पूरा करने के लिए। इसलिए एक तरफ अमरीश जी है जो मेरे महान भक्त है, उनके प्रति मेरी वात्सल्यता है, और दूसरे तरफ आप है, जैसे आपकी तरह जगत में अनेक लोग हैं जो अनेक अनेक प्रकार के दुखों से मेरे पास आते हैं, लेकिन मेरा पलड़ा अमरीश जी की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि मेरे सारे गुणों के ऊपर सर्वश्रेष्ठ गुण एक ही है कि मैं मेरे भक्तों के प्रति अति वात्सल्य हूं, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और ये सुदर्शन मेरी भी नहीं मानेंगे ये भी, क्योंकि ये तो भक्तों की रक्षा करने में भी बड़े फेमस है, इसलिए तो मेरी भी नहीं मानेंगे अभी। अब दुर्वासा ऋषि को समझ आ रही है बात कि जब भगवान के पास जाने के बावजूद भी जब हमारा कोई निस्तार ना हो रहा हो और वो भी जब मना कर रहे हो, तब उनके हृदय में बात समझ में आई कि नारद जी कहते थे ना कि अमरीश जी बड़े महान है, जगह जगह अमरीश जी का गुणगान सुनने को मिलता था ना, अब समझ में आया कि अमरीश जी का गुणगान सुनने को क्यों मिलता था। और बड़ी आश्चर्य की बात तो ये भी हुई थी कि जब दुर्वासा ऋषि भगवान से मदद मांगने के लिए गए थे ना, तब भगवान लक्ष्मी जी के साथ अमरीश जी की ही चर्चा कर रहे थे आपस में, अमरीश महान भक्त है, अमरीश ऐसा है, अमरीश वैसा है, जिनकी चर्चा हो रही थी उन्हीं के सामने इन्होंने द्रोह किया है और मदद मांगने के लिए आए हैं। भगवान अपने धाम में बैठे लक्ष्मी जी के साथ भी भक्तों की चर्चाएं कर रहे हैं। अब ऐसे भक्तों के प्रति को द्रोह करके भगवान के द्वार तक भी पहुंच जाए, ये तो ऐसी बात हो जाएगी कि स्कूल में गए हुए किसी के बड़े प्यारे पुत्र को कोई वहां पर खूब फटकार लगाए और फिर उसके माता पिता के घर पे आए और दरवाजा खटखटा के बोले कि मैंने आपके पुत्र को बड़ा परेशान किया है, उसको मारने तक का भी प्रयास किया मैंने, लेकिन आप मुझे माफ कर देना। अब कौन माता पिता माफ करेंगे ऐसे? तो भगवान के लिए तो ये उनके प्रिय पुत्रों के समान है सब महान भक्त, और उनको मारने तक का प्रयास करने के बाद भगवान से कह रहे प्रभु ये सुदर्शन चक्र परेशान कर रहा है, इसको बोलो ना मुझे छोड़ दे, माफ कर दे। कैसे माफी मिल सकती है? भगवान कैसे माफ कर दे? इतना बड़ा हृदय भगवान नहीं ला सकते कि भक्त के ऊपर हुए प्रभाव प्रहार को भी भगवान माफ कर दे। ऐसी तो घटना आज तक ग्रंथों में नहीं हुई कि भक्तों के ऊपर हुए अत्याचार और ऐसे भयंकर प्रहारों को, ऐसे जघन्य अपराधों को भगवान ने अपने पक्ष में रखकर किसी ऐसे दुष्ट व्यक्ति को माफ कर दिया, चल ठीक है कोई बात नहीं जा तेरे को दया कर दे, ऐसा तो भगवान कभी नहीं करेंगे। एक घटना नहीं होती ऐसी, किसी भी शास्त्र में ऐसा एक प्रसंग नहीं मिलेगा जहां भगवान अपने भक्तों को दुखी अवस्था में रखते हुए भी ऐसे अपराधियों को माफ करते हो। भगवान ऐसा नहीं करते, हमेशा अपने भक्त का ही पक्ष लेते हैं, छोड़ते नहीं भगवान कभी। लेकिन भगवान ने उनको एक उपाय जरूर बताया, कहते प्रभु के दर्शन किए तो व्यर्थ तो नहीं जाएंगे ना, जैसे प्रभु के दर्शन करते हुए कौरव सेना में जो मर जाते थे ना उनका भी भगवान लाभ कर देते थे। भले कौरव सेना में खड़े हो लेकिन सामने कृष्ण के दर्शन करते करते शरीर छूट रहा है ना, तो भगवान की अपनी तो कोई योग्यता होती है, उनकी तो महानता रहेगी वहां पर। तो दुर्वासा ऋषि जी को भी प्रभु के दर्शन हुए हैं, वो व्यर्थ तो नहीं जाएंगे। तो उपचार बताया भगवान ने, जिन अमरीश के प्रति तूने इतना दुर्व्यवहार किया है ना, उस अमरीश जी के पास जाओ और वहां पर जाके उनसे माफी मांगो, याचना करो, निश्चित रूप से भक्तों का हृदय बड़ा दयालु होता है, वो माफ कर सकते हैं। अभी दुर्वासा ऋषि क्या मुंह लेकर अमरीश जी के पास जाए, इतना दंड दिया हो, इतना परेशान किया हो, अब शब्द बोले, मारने का प्रयास किया, अब कैसे माफी मांगने जाए। लेकिन कहते बिना माफी मांगे कोई उपचार भी नहीं है। कोई व्यक्ति सोचे काम करो नहीं जाते वहां पर, किसी कौन जगह पर चले जाएंगे और शांति से भजन करते रहेंगे, दिन दिन रात रात भजन करते रहेंगे, कैसे जाए माफी मांगे, छोड़ नहीं जाना माफी मांगे। पता होता है ना कभी कि कहां अपराध हो गया, व्यक्ति उस दर से अपने आप को दूर हटा के अगर भजन का मार्ग पकड़ ले तो भगवान उसके ऊपर दया नहीं करते कभी, क्योंकि बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब हो ना पाए कृष्ण पदे प्रेमदन। अगर जीव जन्म जन्मांतर तक भी कृष्ण का भजन करता रहे ना तो प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता, अगर वो ऐसे महान वैष्णव के चरणों में अपराध करता रहे तो। इसलिए भगवान कभी भी उसको प्रेम नहीं देते। इसलिए ये रास्ता ही बिल्कुल गलत है कि पता है किसके प्रति अपराध किया और खूब परेशान किया उनको और फिर भजन का मार्ग लेके बैठ गए, ये विधि नहीं है। भगवान ने विधि बताई, जाओ उनके पास माफी मांगो उनसे, वो माफ कर देंगे क्योंकि वो महान है बड़े। दुर्वासा ऋषि को बार बार आदत लगी थी ना फटकार लगाने की, तो वैसे तो ये सारी घटना भगवान अपने महान भक्तों के चरित्र का निखार करने के लिए, उनको दर्शाने के लिए कर रहे, लेकिन उन्होंने उसमें दुर्वासा ऋषि को क्यों लिया था पता है? दुर्वासा ऋषि को इसलिए लिया था क्योंकि वो सामान्य कक्षा के व्यक्ति नहीं थे। जिस प्रकार अमरीश महाराज उत्तम अधिकारी कक्षा के व्यक्ति थे ना, उसी प्रकार दुर्वासा और उसे भी योगियों में, सिद्धियों में, उन सभी में उत्तम कक्षा के व्यक्ति थे, सामान्य नहीं थे वो भी। इसलिए कहते इतने बड़े महान भक्त के सामने उनका भक्ति का गुण प्रकट कराने के लिए, उसमें निखार दिखाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति के जाने से कार्य नहीं बनेगा। सामान्य प्रकृति का व्यक्ति जाएगा तो अमरीश जी के अंदर से इतने विशेष गुण प्रकट नहीं करा पाएगा। इसलिए भगवान ने योजनाबद्ध नारद मुनि को कहकर दुर्वासा ऋषि के हृदय में प्रेरणा का बीज डाला था, थोड़ी ईर्ष्या रूप भाव प्रकट करवाया था। इतना बड़ा महान कैसे हो सकता है, एक गृहस्थी ऊपर से राजा, तपस्वी से भी बड़ा महान हो गया क्या? और ये सारी घटना भगवान के इच्छा मात्र से हुई, ये दर्शाते हुए भी कि इतने उच्च कक्षा का कोई व्यक्ति हो, दुर्वासा ऋषि मतलब नेक्स्ट टू शिवजी, इतने उच्च कक्षा का व्यक्ति हो तो उसकी भी यह दशा जब हो सकती हो तो फिर भक्तों के प्रति अपराध करने वाला सामान्य व्यक्ति होता है उसकी क्या अवस्था होगी। इसलिए व्यक्ति को बड़ा सावधान रहना चाहिए। दुर्वासा ऋषि संकोच तो कर रहे थे लेकिन फिर भी उपचार नहीं है, संकोच वशी आ गए। भगवान के वहां से निकले तो भी सुदर्शन चक्र उनकी पीठ को तो जला ही जा रहा है, ये नहीं कि प्रभु को मिलके आए अभी माफी मांगने जा रहे तो थोड़ी राहत दे, माफी जब तक नहीं मांगने आए ना तब तक सुदर्शन चक्र जी तो पीठ जला ही जा रहा है, जला ही जा रहा है। सुदर्शन जी छोड़ नहीं रहे, महल में आ गए, अम्बरीश महाराज वहीं पर खड़े हुए हैं। कहते एक तरफ भक्ति है और एक तरफ तप और योग है। कहते दुर्वासा ऋषि ने पूरा बल लगा लिया लेकिन फिर भी ये दशा, और अम्बरीश महाराज ने एक शब्द उच्चारण भी नहीं किया, एक स्टेप भी नहीं उठाया तो भी अम्बरीश महाराज जी की ये अवस्था है। कहते भक्ति की प्रधानता कितनी है कि भक्त एक शब्द उच्चारण नहीं करता ना तो भी वो कितना सुरक्षित है, और दुर्वासा ऋषि सब उहापोह मचा रहे, इतना तप है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनकी अवस्था है। कहते एक तपी तपस्वी प्रकृति का, एक सिद्ध प्रकृति का, योगी प्रकृति का ऐसा व्यक्ति आज माफी मांगने के लिए आया है एक भक्त के पास। कहते भक्ति में शक्ति कितनी है। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा ये सुदर्शन जी मुझको बहुत तड़पा रहे हैं, आप कृपा करके उनसे कहिए ना कि मुझे छोड़ दे। तब अम्बरीश महाराज जी ने सुदर्शन चक्र जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैंने अपने जीवन काल में निष्काम भक्ति की है लेकिन आज आपसे मांगता हूं, कुछ कभी मांगा नहीं लेकिन आपसे मांगता हूं, इनको ये जो कष्ट हो रहा है ना ये कष्ट से आप इनको निवृत्त कर दीजिए। अगर मैंने कुछ ठीक ठाक थोड़ी भी भक्ति की हो ना, मैंने आज तक मांगा नहीं, पहली बार मांग रहा हूं आपसे कि इनको कष्ट से मुक्त कर दीजिए, फिर भी सुदर्शन चक्र जी का ताप कम नहीं हो रहा है। कहते धीर प्रकृति के व्यक्ति पहले तो गुस्सा करते नहीं और जब करते हैं तो शांत होते नहीं। कहते नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, आंते फाड़ के बाहर निकाल दी ना, फिर भी नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे, समस्त दिशाएं सारे जगत जल रहे, अब हिरण्यकश्यप मर गया, अब शांत हो जाओ। कहते महान व्यक्ति गुस्सा करे तो जल्दी शांत भी नहीं होंगे फिर ऐसे, लेकिन उनका गुस्सा वो भी जीव का हमेशा कल्याण ही करता है, ये ही उनकी महानता होती है। सुदर्शन चक्र जी से बार बार प्रार्थना करने के बाद सुदर्शन चक्र जी की भक्तों के प्रति निष्ठा इतनी अधिक मात्रा में थी ना, आप कह रहे सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी इसको तो अभी थोड़ा और जलाना है, इसने ठीक नहीं किया। अमरीश जी कह रहे छोड़ो ठीक, नहीं कहते नहीं, फिर भी निष्ठा उनकी भक्तों के प्रति इतनी है ना कि वो ताप शांत नहीं कर रहे, फिर बड़ी मुश्किल से बार बार विनती करके उनके ताप को शांत कराया गया और फिर वहां से अप्रकट हो गए। तो इस प्रकार से एक महान भक्त की विजय होती है सिर्फ मात्र भगवान के प्रति शरणागत रहने मात्र से, यही उनकी महानता थी। दुर्वासा ऋषि को सारी घटना समझ में आ गई कि क्यों अम्बरीश जी को इतना महान बोलते हैं। हम ब्राह्मण घर में भले जन्मे हो, अनेक प्रकार की सिद्धियां क्यों ना करते लेते हो, लेकिन फिर भी जो अनन्य भाव से भगवान के चरणों में आश्रित हो जाता है ना, अपना जीवन का सर्वस्व त्याग के, ऐसे उदार भाव वाले व्यक्ति लोग अपने शरीर को भी अपना ना समझते हो, फिर परिजनों में और दूसरी चीजों में मोह तो बहुत दूर की बात है। ऐसे लोगों की तो निश्चित भगवान रक्षा करेंगे करेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। जो श्वास भी भगवान के सुख के लिए लेते हो, ऐसे वैष्णव को भगवान क्यों छोड़ेंगे? फिर ऐसे वैष्णव के लिए भगवान हमेशा उनके निकट में ही रहते हैं। तो दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश जी की ये महानता समझ में आ गई कि अम्बरीश जी कितने महान हैं, और कभी भी जीवन में भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, ये भी उनको समझ में आया। तो तात्पर्य यह था कि भक्तों की महानता कैसी होती है और भक्तों से किसी भी प्रकार का द्रोह नहीं करना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज, इतनी सारी घटना होने के बावजूद भी अम्बरीश महाराज जी के हृदय में एक लेश मात्र भी ये प्रकट नहीं हुआ कि देखो मैं सही था ना, तो आखिर में मेरी रक्षा हुई ना, देखा दुर्वासा ऋषि का नाश हुआ, एक तरीके से प्रतिष्ठा का उनको दंड मिला ना, मैं सही था ना, उन्होंने ऐसा भी भाव बिल्कुल व्यक्त नहीं किया। वो तो ऊपर से ये घटना के बाद भी बड़ा दुखी होते हैं, अरे रे 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 रे, इतना कष्ट पाया उन्होंने, इतना कष्ट पाया, दुर्वासा ऋषि की पीठ पूरी जल गई थी, इतना कष्ट पाया। तो ये तो अहम शून्य भक्त होते हैं कि अपनी जीत के बावजूद भी उनके हृदय में किसी भी प्रकार का ये भाव भी नहीं उमड़ता कि मैं तो सही था ना, देखा साबित हुआ ना, ये भी भाव नहीं उमड़ता उनके हृदय में। तो संतों का स्वभाव होता है दया करना, निश्चित रूप से। ऐसी निष्ठा भरत जी ने राम जी के प्रति दिखाई थी, जब हनुमान जी को ना समझने के कारण उन्होंने तीर मार दिया, हनुमान जी बेहोश हो गए। अब पता चला कि तो राम जी का ही काम करने गए थे, अब इतना पश्चाताप हो रहा है, मेरे जैसे पापी व्यक्ति के कारण पहले राम जी एक तो वनवास भुगत रहे और आज लक्ष्मण के जीवित रहने की आखिरी उम्मीद है, इनको भी मैंने यहाँ धराशायी कर दिया। लोग संसार में पता चलेगा तो क्या कहेंगे, देखो भरत तो पहले से था ही ऐसा, आखिर में भी यही सही किया उसने। भरत जी को अपार दुख लगा, तब भरत जी ने भी अपनी भक्ति को प्रीति को दाव पे लगाया था, मैंने मन वचन कर्म से अगर राम जी के चरणों में अनन्य भक्ति रखी हो ना, तो ये जो कपी है ना, बिना कष्ट प्राप्त किए, बिना थकावट के अभी स्वस्थ होकर खड़े हो जाए, अपनी भक्ति को ही दाव पे रख दिया सीधा। अब इतनी बड़ी शक्ति को जब कोई व्यक्ति दाव पे लगा दे तो ना घटित होने वाली घटना ना वो भी घटित हो जाए। और झट हनुमान जी खड़े हो गए और भरत जी ने अपनी ही शक्ति से हनुमान जी को लंका तक भी पहुंचाया। तो वैष्णव लोग वैसे तो कभी कुछ मांगते नहीं, लेकिन अगर वो भक्ति ज्ञान लेकर अगर कुछ मांग भी दे ना, तो भगवान उसको पूरा भी करवा देते हैं। हमारी परंपरा में एक वैष्णव थे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वो मायापुर में विराजते थे, उनके सेवक थे बिहारी दास जी, अनन्य भाव से सेवा करते थे। ऐसी सेवा के वृंदावन से मायापुर तक गुरुजी को टोकरे में लेके जाते थे पैदल पैदल, इतना सर के ऊपर उठा के इतनी दूर की यात्रा करते थे। अब सेवा में क्या रह गया बाकी, इतनी सेवा करते थे। एक दिन मायापुर में क्या हुआ, नवदीप मंडल धाम में थे और बिहारी जी बीमार हो गए, समय हो गया है, बाबा जी याद कर रहे, बिहारी जी लेटे हुए, बाबा जी ने आके पूछा क्या हुआ तुमको, बिहारी जी लेटे हुए ऐसी अवस्था हो गई बिहारी जी की कि बस प्राण निकलने की कगार पर आ गए। बाबा जी ने आए देखा, कहते क्या हो गया, तुलसी का पत्ता उसके मुख में रख के उसके सर के सिराने के पास ही बैठ गए। वैसे तो भक्त अहंकार भी नहीं करते, कहते बिहारी को मेरी अनुमति के बगैर कौन ले जाएगा, मैं भी देखता हूं कि हमने भी भजन नहीं किया कोई, निष्ठा होती है ना ऐसे भक्तों की, अहम नहीं होता। बैठ गए वहां पर, हरिनाम करने लगे, कहते मैं यहीं बैठा हूं, देखता हूं यमराज या कौन ले जाता है इसको, मैं यहीं बैठा हूं। 22 दिन लगातार उनके सिराने पर बैठकर हरिनाम करते रहे बिना खाए। उस समय उनकी अवस्था भी 140 वर्ष के ऊपर की थी। 22 दिन लगातार बैठे रहे वहां पर। 22 दिन के बाद जब बिहारी खड़े हुए ना, बाबा जी कहते बहुत भाई लंबा सो लिया, हाँ अभी मेरे को भी भूख लगी, थकावट रूठ जा, कुछ भिक्षा भिक्षा करके मुझे भी खिला। तब बिहारी सर्वप्रथम उठा ना, बाबा जी को प्रणाम करके तुरंत जल लेके बाबा जी का मुख धुलाया। 22 दिन से गुरु बैठे वहां पर। देखो एक सच्चा शिष्य गुरु की इतनी सेवा कर रहा था, इसका तात्पर्य ये नहीं कि गुरु कभी भूल गए उनको। कहते गुरु भी जब आन पड़ते ना तो शिष्य के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। गुरु तो सदैव करते रहते शिष्यों के लिए, उन्हीं के बल पर तो हम भक्ति मार्ग में टिके हैं, नहीं तो स्वतंत्र भक्ति जीव कैसे कर सकता है। उन्हीं का आश्रय है इसलिए तो हो रही है। जो जो इस प्रकार से गुरु का त्याग करके स्वतंत्र भक्ति का अवलंबन करना चाहते हैं या धामों में चले जाते हैं, ज्यादा देर तक भक्ति नहीं कर पाते वो लोग। गुरु का द्रोह करके ऐसे भक्ति सफल हो जाए तो फिर तो गुरु परंपराएं बनाना ही व्यर्थ है सब। तो इसलिए वैष्णव लोग जब जरूरत पड़े तो इस प्रकार से हठ भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये कार्य अमरीश जी ने ना अपने लिए, भरत जी ने अपने लिए नहीं, और जगन्नाथ दास बाबा जी ने भी अपने लिए नहीं, किसी ने अपने लिए नहीं मांगा, हट की दूसरे जीव के कल्याण के लिए, अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा। फिर भी ये होता है वैष्णव का स्वभाव, हमेशा दया करना। संत का प्रसंग आता है कि जिसमें संत महात्मा किसी रास्ते से गुजर रहे थे, आगे जंगल लगने वाला था, लोगों ने बोला वहां पर एक बड़ा राक्षसी प्रकृति का व्यक्ति है, लोगों से इतनी घृणा करता है कि लोग आते जाते ना पत्थर मारता है उनको, खूब कष्ट देता है, कभी मार भी देता है, आप वहां से मत जाइए। शेर का मुख और साधु का मुख जहां मुड़ जाए वहीं चले, वो नहीं सोचते बोझते। बुद्ध जी भी जब जा रहे थे तो उनको रोका गया कि वहां उंगली माल डाकू है, वहां मत जाइए, उंगलियां काटता है वो, फिर माला बना के पहनता है। बुद्ध जी वहीं गए। चैतन्य महाप्रभु को बोला उधर से मत जाइए, वहां तो नरोची नाम का डाकू है। महाप्रभु कहते कोई नहीं, उधर से ही गए। साधु निर्भय होते हैं, भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं, इसलिए वो नहीं ऐसा टेंशन लेते ज्यादा, मुख मुड़ गया तो बस चलते रहते हैं, उनको किसी की परवाह नहीं ऐसी कोई। ये भी चल पड़े, रास्ते में वही डाकू आया, ईर्ष्यावश उसने क्या किया, पत्थर लेके बस साधु के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया, सर फोड़ दिया साधु का। साधु बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। कुछ दिनों पश्चात क्या हुआ कि साधु को वहां से वापिस लौटना था, वो साधु वहां से वापिस लौटे, और वहां से वापिस लौटते समय क्या देखा उन्होंने कि रास्ते में वो डाकू बिल्कुल अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है, बहुत तड़प रहा है, प्राण छूट नहीं रहे उसके। साधु को देखकर दया गया, रे 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 इतना कष्ट हो रहा है इसको, नीचे बैठ गए, उसका सर अपनी गोद में रख दिया, हाथ फेराने लगे, उसको बड़ी सांत्वना दी, फिर उनके आशीर्वाद से वो खड़ा हुआ देखा तो कहते वो तो वही साधु जिसका मैंने सर फोड़ दिया था, फिर भी कहते उन्होंने मेरे को बचाया, यही तो कहते साधु स्वभाव है। कि वो बराबर का उत्तर सामने रखते नहीं। किसी ने उनके लिए कुछ किया तो वो समझते, उसको तो समझ नहीं है इसलिए किया है, लेकिन वो तो वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा धर्म के लिए उपयुक्त होता है, वो प्रत्युत्तर का व्यवहार नहीं चाहते, यही उनकी महानता होती है। अम्बरीश महाराज इसी प्रकार से सेवा पूजा के कार्य करते रहते थे, उनकी अनेकों रानियां थी, उनके अपने अपने महल बना के दिए थे, अपने महल में अपना भजन करते रहते थे, सेवा करते रहते थे। महानता तो उनकी इतनी थी कि आटा भी खुद पीसते थे, गर्मियों के दिनों में आटा पीस रहे, बहुत पसीना हो रहा है उनको, ये सर्दी गर्मी सुख दुख को ये कलयुग में नहीं है, ये बाकी युगों में भी थे, इसलिए कलयुग कलयुग बड़ा कष्ट है। कष्ट तो भौतिक जगत में हमेशा ही रहता है, बस उसकी परिस्थितियां बदलती रहती है। सतयुग में जन्म मिल जाएगा ना तो भी कष्ट तो वहां भी रहेगा, क्या जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा, वृद्ध अवस्था सतयुग में नहीं होती है क्या, बीमारियां नहीं लगती है, कष्ट तो जीव को हमेशा ही लगता रहता है। इसलिए ये सोचना कि हम कलयुग में इसलिए कुछ ज्यादा ही परेशान है, भगवान को भूलकर जीव किसी भी समय रहे किसी भी युग में रहे ना वो परेशान ही रहता है, क्योंकि माया के जगत में सिर्फ भगवान के चरणों में ही सुख है और कहीं है ही नहीं। तो पर अम्बरीश महाराज चक्की चला रहे थे, बड़ा पसीना हो रहा था, आटा भी भगवान के लिए खुद तैयार करते थे, नदी में से पानी गड़े में खुद लाते थे, स्नान करने जाते थे, स्नान करके आते समय पानी लेके आते थे, उसी से स्नान कराते थे भगवान को। भगवान के संदर्भ में जितनी सेवा है उसमें दूसरे का सहयोग नहीं लेते थे, सारी सेवा खुद। तो चक्की चलाते समय गर्मी बहुत लग रही थी तो भगवान पीछे आके भगवान पंखा करने लगे, वो कहते हवा बड़ी अच्छी आ रही है, पीछे देखा तो भगवान खड़े, ओ जय जय प्रभु, आप मेरे को क्यों अपराध लगा रहे हैं, आप पंखा कर रहे हैं भी मेरा क्या होगा। कहते भाई ये तो चक्की चला चला के मेरी जो सेवा पूजा कर रहे हैं, मेरे माथे इतने ऋण लगाए तूने, फिर मेरा क्या होगा, तो मैं पंखा लगा लगा के मैं भी अपना काम कर रहा हूं, तो चक्की चला चला के अपना काम कर रहा है, तू अपना कर मैं अपना कर रहा हूं। तो भगवान भी कहते भक्त इतना कर दे तो मेरी भी फर्ज है ना, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए उनके लिए, भगवान भी इतना प्रेम करते हैं। ऐसे अम्बरीश महाराज का स्वभाव था। अम्बरीश महाराज जी की ख्याति सर्वत्र फैली हुई थी, अम्बरीश महाराज जी के प्रति अयाचक अपना किसी भी प्रकार का अजात शत्रु होता है ना, जैसे कि जिसका कोई बैरी नहीं होता, सभी उसको प्रेम करते होते, ऐसे अम्बरीश महाराज को भी सभी प्रेम करते थे। तो अम्बरीश महाराज जी की प्रशंसा सुनकर एक राज्य के राजा, उनकी एक पुत्री है छोटी, उसने जब अम्बरीश महाराज जी की ये सारी प्रशंसा सुनी तो कहती पिताजी, अब क्षत्रिय घराने की लड़की पिताजी को सामने जाके तो नहीं कहेगी, लेकिन फिर भी इसने कहते निर्लज्ज होके भी बोल दिया, पिताजी मुझे अम्बरीश जी से विवाह करना है। जबकि कन्या सामने से पिताजी को ऐसा थोड़ी कहेगी कि मुझे करना है, कहते लेकिन इतने महान है कि वहां कहने से ही काम बनेगा, तो उसने जाके कह भी दिया। एक ब्राह्मण को भेजा उसने पढ़ा के कि अम्बरीश महाराज जी को जाके निवेदन करो मेरी तरफ से कि हम उसे विवाह करना चाहते हैं। अम्बरीश महाराज जी के पास ब्राह्मण आया, निवेदन किया, अम्बरीश जी कहते हमारी पहले अनेक रानियां हैं, हम उनसे बातचीत नहीं करते, हमारा उनके साथ व्यवहार नहीं होता, हम हमारा काम करते रहते हैं, हमको विवाह में कोई आनंद नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं हमको। अम्बरीश महाराज जी ने बात को वहीं छोड़ दिया। ब्राह्मण वापिस आया, ब्राह्मण ने वापिस आके कन्या को राजकुमारी को बताया कि अम्बरीश जी तो ऐसा कह रहे। कन्या बड़ी खुश हो गई, यही तो मैं चाहती थी कि वो लोभी नहीं है, वो काम ही नहीं है, उनको तो विवाह में कोई किसी भी प्रकार का उनको तो कोई रुचि नहीं है, यही तो उनकी महानता है, इसीलिए तो बड़े भक्त है वो, ये तो हमने करना है, उनका कहाँ रुचि है, तुम दोबारा से जाओ उनके पास और उनको जाकर बोलो आप बस मुझे स्वीकार कर लो, कभी मुख नहीं देखोगे, कभी बात नहीं करोगे, जहां रखोगे जैसी भी परिस्थिति होगी मुझे सब मंजूर है, मुझे आपसे कोई आशा नहीं है, बस आप हमारे पति के रूप में हो जाइए, हमको स्वीकार कीजिए दासी के रूप में। दोबारा से जाके कहो, ब्राह्मण दोबारा आए, दोबारा ब्राह्मण ने विनती की तो अमरीश महाराज जी ने सोचा अब भक्त स्वभाव है, अब बार बार आ रहे शरण में आ रहे, अमरीश महाराज जी ने अपनी तलवार दी, कहते हमारे पास तो विवाह करने जाने के लिए समय नहीं है, खुद का विवाह हो रहा है, हमारे पास तो समय नहीं है, ये हमारी तलवार ले जाइए और एक क्षत्रियों का प्रतीक होता है इसके साथ विवाह करवा दीजिए उनका। अभी तलवार ले गए, तलवार के साथ उस राजकुमारी का विवाह करा दिया और उसको ले आए। जब राजकुमारी आई तो अमरीश महाराज जी ने दिशा निर्देशन दे दिया, इनको एक महल में उनके लिए अच्छा स्थान तैयार कर दिया जाए, सारी व्यवस्था उनके लिए कर दी जाए, अभी वो हमारी रानी है तो आराम से बाकी रानियों की तरह राज्य का सुख भोगेगी। लेकिन बाकी रानियों जैसा व्यवहार नहीं था इनका, या तो गई रहने भी लग गई, लेकिन बार बार मन उनका अमरीश जी कर क्या रहे, क्या सेवा कर रहे उसी में लगा हुआ है। अर्धांगनी के नाते अगर वो सेवा कर रहे तो मेरा भी फर्ज बनता है, मैं भी कुछ सेवा करूं बीच में। तो दासी को पूछती है कि मुझे अपने पतिदेव की सेवा में सहभागी नहीं होना है तो क्या करे, कहते वो तो किसी को सेवा बांटते ही नहीं, सेवा करेंगे कैसे आप। बार बार युक्ति लगाई तो एक अवसर प्राप्त हुआ, कहते वैसे तो अमरीश जी अपने निज मंदिर से बाहर जाते नहीं, लेकिन दिन में प्रातः सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाते और नदी का जल भर के लाते भगवान के अभिषेक करने के लिए, वो बीच का समय होता है, तो उस बीच के समय में आप कुछ कर सकते जाना हो तो। छोटी रानी आती थी उस बीच के समय में, उससे जो बन पड़ती थी सेवा करके चली जाती थी। अमरीश जी को हल्की भनक तो लग गई, दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई, अमरीश जी को भी पक्का हो गया कोई आता है और मेरे हिस्से की सेवा चुरा कर चला जाता है। अमरीश जी को इस बात से अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो सारी सेवा स्वयं करते थे, उनको ये नहीं चाहिए था कि मेरी सेवा में कोई हिस्सा लगवाए। अमरीश जी चौथे दिन क्या किया, सबको बोला कि तुम लोग जाओ नदी की तरफ स्नान करने, तो जैसे रोज जाते अमरीश जी नहीं गए, सबको लगा कि राजा भी साथ में होंगे, वो नहीं गए, वो छुपकर वहां पर बैठ गए। छोटी रानी आई सेवा करने लगी, अमरीश जी झट आ गए, आप कौन यहां, कहते हम आपकी सबसे छोटी रानी है। अच्छा अमरीश जी, तो आप यहां किस लिए आए और ये आप हमारी सेवाओं को क्यों चुरा रहे हैं ऐसे, कहते हम आपकी अर्धांगनी है तो आधी सेवा करना हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। अमरीश जी कहते अगर आपके हृदय में सेवा करने का इतना ही भाव है तो आधी क्यों पूरी करिए, अपने महल में भगवान को विराजमान कराइए और दिन दिन भर करते रहिए पूरी सेवा, आधी क्यों करनी है। तो अमरीश महाराज जी ने क्या किया, उनको एक तरीके से सेवा करने के लिए मार्गदर्शन दे दिया, उनको ये बड़ा अच्छा लगा कि भी पति सेवा करते तो फिर मैं भी करूं। उन्होंने महल में भगवान के अपने विग्रह विराजमान किए और जैसे अमरीश महाराज सारे विधि विधानों से सेवा करते थे ना, वैसे वो भी सेवा करने लग पड़े बड़े आनंदपूर्ण तरीके से। लेकिन क्या होता है, वही बात होती है, ये तो सबसे छोटी रानी तो बड़ी महान थी, बाकी रानियों की अवस्था में इसमें भक्ति श्रेष्ठ थी इसलिए ये तो कर सकती है, लेकिन अगर कोई सच है कि मेरे पति को प्रसन्न करने के लिए मैं भी कर लेती हूं ऐसी नई भक्ति, नौ दिन दसवें दिन खींचातानी, नौ दिन खींच कर लेगा व्यक्ति, दसवें दिन तो खींचतान करके बंद करनी पड़ेगी फिर। तो व्यक्ति को दूसरा सिर्फ कर रहा है इसलिए नहीं करनी है, उसकी रुचि भी तो होनी चाहिए। रानी की वास्तव में रुचि थी, कई बार लोग दूसरे को देखकर करते रुचि नहीं होती और फिर कभी कभी छोड़ भी देते हैं, धक्का लगता है इसलिए, और कभी कभी उसी बहाने में तर भी जाते हैं देखा देखी भक्त में तर भी जाते हैं और कभी रुक भी जाते हैं। तो एक हलवा है के चरित्र आता है, हलवा वहां से गुजर रहा था, देखा संतों की जमात लगी और खूब माल पूरे चक्का चक हो रहे। अब संतों को क्या है, भिक्षा मिली, भंडारा आया, अरे भजन करो आनंद मंगल से, जो मिला खाओ पियो, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, आज माल पूए खीर रबड़ी मिला तो वो खाओ। अब हलवा वहाँ बैठ गया, खूब दबा के खाया उसने, कहता ऐसा रोज होता है आपके वहाँ? कहते करीब करीब रोज ही होता है। उसने सोचा इतनी मेहनत करके मुश्किल से रोटी मिलती है, ये ऐसे माल पूए मिल रहे, इन्हीं के जमात में आ जाते फिर साधु ही बन जाते, फिर हर्जा क्या है। बन गया साधु, रहने लगा उनके साथ, अब वो बनाता मालपुए के लिए, समय परिस्थिति एक जैसी हमेशा नहीं रहती। बारिशों के दिन आए, अब भयंकर बारिशों के दिन आए तो साधु लोग कहीं भिक्षा करने के लिए बाहर भी नहीं जा सके, तो साधु का तो क्या है, अच्छा मौसम ठीक नहीं है, आज मामला जमेगा नहीं, कोई नहीं, चलो बैठो भजन करो, कल की कल देखेंगे। साधु तो बैठ गए बिना टेंशन के, ये कहते आज भोजन पानी, कहते आज भोजन पानी, आज उपवास, साधुओं के वहां पर उपवास भी होते हैं, कहते ये तो मैंने सुना ही नहीं था। अब पहले दिन उपवास, दूसरे दिन उपवास, तीसरे दिन उपवास, अब इसके तो प्राण कंठ पे आ गए, एक दिन भूखा रहा ना हो। अब साधुओं को तो अभ्यास भी था, मालपुए खाने का अभ्यास भी था और उपवास करने का अभ्यास भी था, उनका काम तो हो गया। अब इसके प्राण कंठ पे आ गए, अब करे तो करे क्या। उतने में उसके गांव तरफ से एक व्यक्ति आया था, तो उसने उसको झट पहचान के बोला इधर आ, कहते मेरे घर पे जाके समाचार देना, वो बैल अभी बेचना दे, बेचना नहीं, अभी वैराग्य पूरा नहीं हुआ, मैं घर आ रहा हूं वापिस। तो मामला ठीक हुआ तो साधुओं से आज्ञा लेके रवाना घर की तरफ। तो नई भक्ति नौ दिन दसवें दिन खींचाता नहीं। तो वास्तव में भक्ति तो अगर हृदय से जागती है तब वो लंबे समय तक चल पाती है, सिर्फ मात्र दिखावे की भक्ति ज्यादा देर तक रंग नहीं लाती है। लेकिन अगर उसमें भी अगर प्रखर साधुओं का संग व्यक्ति बना के रख लेना उसमें भी, तो कभी उसमें भी काम बन जाता है, लेकिन उसमें प्रयास हमको भी करना पड़ता है। माया तो किसी को छोड़ती नहीं, कभी तो घूम फिर के साधुओं के ऊपर भी आती है लेकिन साधु बच जाते हैं। एक पंडित जी और राजा की कथा आती है। पंडित जी इतनी अच्छी कथा करते थे कि राजा उनकी कथा सुनने जाता था, और कथा सुनते सुनते राजा को बड़ा भाव आ गया, और कथा सुनते सुनते बार बार ये महसूस होने लगा वाकई में जगत नाशवान है, वाकई में संसार के संबंध शिक्षण भंगुर है। तो अभी उसकी अरुचि हो गई, महल में आए ना तो ऐसे रहे जैसे पराया महल हो। अब रानी को भनक लग गई और भनक के साथ साथ चिंता भी लग गई, अब राजा ये करेगा हमारा क्या होगा, राजा है तो रानी है और वैभव भी है, अब राजा नहीं तो रानी भी नहीं तो वैभव भी नहीं, ये चकाचक माल सामान मिल रहा है वो राजा की रानी इसलिए, राजा ने वैराग्य ले लिया तो फिर हमारा क्या होगा। रानी बड़ी परेशानी में आ गई, कहते राजा के अंदर वैराग्य आया कहाँ से, पता पड़ा कि वैराग्य एक पंडित जी की कथा सुनते वहां से आया, पंडित जी बड़े अच्छे भक्त थे। रानी ने मांजरा समझ के बार बार प्रयत्न किया कि अभी राजा को कैसे भी करके वापिस तो लाना पड़ेगा। रानी ने अपने एक दासी भेज दी चकाचक कपड़े पहना के, और रोज कथा सुनने जाए और पांच मुद्राएं रख दे वहां पर, दूसरे दिन कथा सुनने जाए पांच मुद्रा रख दे, ये सोच के कि जो चढ़ावा ज्यादा चढ़ाते ना तो कभी कभी जो कथाकार होते ना उनको विशेष ध्यान देते, आई जी बैठिए जी यहाँ। लेकिन ये ऐसे कथाकार नहीं थे, पैसे के चाटुकर कथाकार नहीं थे, इनको पैसे से कोई लगाव नहीं था, वो ध्यान नहीं देते थे उसके ऊपर, वो पांच पांच मुद्राएं रखती जाए लेकिन उनका कोई ध्यान ही नहीं उसके ऊपर। आखिर में रानी को जाके उसने कहा कि रानी साहिबा वो तो उसके ऊपर कोई लक्ष्य नहीं लेते। फिर उन्होंने दूसरा उपचार किया, पंडित जी रात को सोए थे, रात को भूत बनकर आई, अलग अलग आवाजें निकालने लगी, चेहरा बदल दिया। पंडित जी कहते कौन हो? राजा के पीछे महल में पीपल का वृक्ष में वहां रहती हूँ, तेरी घरवाली ने मेरी पूजा करेगी ऐसा बोली थी वो, लेकिन मेरी पूजा की नहीं उसने कभी, तो तू अपनी घरवाली को कंधे पर चढ़ा के मेरी पूजा करने के लिए रात को आ, नहीं आएगा तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। पंडित जी ने घरवाली को कहा, घरवाली कहते ऐसी तो कोई प्रतिज्ञा याद नहीं आ रही है, कहते वो भूतनी आई थी। लेकिन अब पंडित जी को मोटा मोटी बात समझ में आ गई, उन्होंने घरवाली को चढ़ाया कंधे के ऊपर और चल पड़े रात को पीपल के वृक्ष के पास, और वहां रानी ताक लगाकर बैठी थी कि जैसे ही आए राजा को बुला लेते हैं। राजा को बुला लिया, कहते महाराज आप देखते हो दिन में इनको कथा करते बड़ी बड़ी बातें करते, देखो ये भी तो तांत्रिक टाइप के और ये भी ऐसी ऐसी चीजों में मानते हैं, और देखो अपनी घरवाली को तो कहाँ कंधे पे चढ़ा के रखा हुआ है इन्होंने, हाँ, और आपको सिखाते संसार के संबंध तो क्षण भंगुर होते हैं। अभी महाराज आ गए, राजा की श्रद्धा थी बड़ी उनके प्रति, आए कहते पंडित जी ये क्या देख रहा हूं मैं, आप आधी रात को यहाँ क्या मांझ रहा है? कहते भाई समय समय का खेल है, आज माया मेरे सर के ऊपर बैठी है, हो सकता है कल तेरे सर पे भी बैठ जाए, समय समय का खेल है। पंडित जी के इशारे राजा को समझ में आ गए कि इशारे कहाँ जा रहे हैं। तब राजा का वैराग्य और बढ़ गया, रानी ने चतुराई तो की थी लेकिन पंडित जी के प्रभाव में राजा का वैराग्य और बढ़ गया। तो प्रसंग ऐसे आते हैं कि कभी तो जीव देखा देखी में भक्ति करने जाता है तो नहीं भी कर पाता, और कभी अच्छे संतों का संग मिल जाए और प्रयास करे तो सफल भी हो जाता है। तो यार रानी तो देखा देखी में नहीं कर रही थी, वास्तव में कर रही थी, और रानी के वहां पर इतना भजन भक्ति होने लगा, अनेक संत महात्मा आने लगे। अब नगर में दो दो बातें एक साथ निकल रही है, अमृत जी तो करते ही थे भजन, रानी लेकिन कम नहीं है, पता है रानी कितना करती है। घूमती घूमती बात नारद जी तक पहुंच गई, नारद जी कहते मिलने जाना पड़ेगा। नारद जी पहले अमृत जी के पास है तो अमृत जी ने बिठाया उनको, कुछ मेवा वगैरह खिलाया, हाथ में ड्राई फ्रूट वगैरह दिया, नारद मुनि ने ग्रहण किया और वहां से छोटी रानी के पास गए तो वहां पर मध्यान्ह के समय में भगवान को राजभोग लगा था। रानी ने नारद जी को बिठा के फूल राजभोग खिलाया और साथ में बहुत सारा बांध कर भी दिया, और इतने इतने लोग वहां पर, इतना हरि भजन हो रहा है। नारद जी कहते वापिस राजा को मिलने एक बार जाना पड़ेगा। कहते महाराज आपके पास आए, आपने तो किशमिश खिला के भेज दिया, रानी का वैभव तो देखो, इतना चकाचक राजभोग खिला, इतने इतने लोग, खूब भजन कीर्तन, आनंद ही आनंद। कहते महाराज आपकी छोटी रानी आपको पीछे छोड़ गई। अब सच्चा संत जो होता है उसको ईर्ष्या नहीं होती। अम्बरीश महाराज अपना महल छोड़कर जाते नहीं थे, प्रभु सेवा छोड़कर अपना मंदिर छोड़कर नहीं जाते थे, अपनी किसी रानी से मिलते नहीं थे, लेकिन यहां पर वो रानी को मिलने नहीं गए, किसी भक्ता को मिलने गए, एक भक्त है कहते वो, उसको मिलने गए। तो रानी जब तानपुरा लेकर पूरे आवास में होश अंतर्मुख अवस्था में खूब भजन कीर्तन गा रही थी, अनेक लोग कीर्तन में नृत्य कर रहे थे, और ऐसी अवस्था में राजा वहां पर पहुंच गया तो द्वारपाल राजा की जय बुला रहा था, राजा ने तुरंत रोक दिया, भाई रंग में भंग मत कर, जय बुलाते रोका दिया। राजा साइड में जाके खड़ा हो गया, राजा देख रहा है रानी इतनी तन्मयता के साथ कीर्तन कर रही है, आंखों में से झरझर आंसू बह रहे और अनेक अनेक लोग वहां पर कीर्तन कर रहे। अमृत जी कहते ऐसा वैभव तो हमारे वहां तो कभी नहीं हुआ, जो तो इनके वहां पर हुआ। अमृत जी छोटी रानी के पास गए, छोटी रानी के पास गए, उनको भनक लगी, उसने आंख खोलकर देखा तो राजा सामने आए, तुरंत खड़ी हो गई। कहते क्यों खड़ी हो गई? पति सामने आए, सम्मान के लिए खड़ी हो गई, उन्होंने ही भगवत भक्ति का रास्ता दिखाया था, इसलिए गुरु है इसलिए भी सम्मान में खड़ी हो गई, और राजा परमेश्वर का रूप होता है इसलिए भी सम्मान में खड़ी हो गई। जब वो खड़ी हो गई तो राजा कहते आप इतना अच्छा कीर्तन कर रहे थे, राजा भी पास में बैठ गया, कहते आप कीर्तन शुरू कीजिए। अब क्या हुआ, खूब कीर्तन हुआ, खूब भक्तों ने नृत्य किया, राजा भी आनंद आनंद विभोर हो गया। दूसरे दिन राजा अपने प्रभु की सेवा करके झटपट निवृत्त होकर छोटी रानी के महल की तरफ भाग रहा है। तीसरे दिन भी ऐसा हुआ तो भगवान जो श्याम सुंदर थे अम्बरीश जी के, कहते राजा अगर हमारी सेवा में अगर इस प्रकार झटपट करने में दिक्कत आ रही हो तो फिर हमको ही वहां ले चलो साथ में, हम भी वहीं चल पड़ेंगे फिर, है? आपका मन अगर उधर की तरफ लगा हुआ है तो प्रियादास जी समझा रहे भगवान इसलिए कह रहे थे क्योंकि राजा भगवान को अकेला छोड़कर वहां आनंद करने के लिए चले जाते थे, सब नित्य करते थे, प्रभु कहते मेरे को अकेला क्यों छोड़ा है, मुझे भी तो साथ ले जाओ, मैं भी तो वहां पर कीर्तन में आनंद लू। तो राजा वहां जाने लगे, अब राजा का आनंद आ रहा है, वहां पर खूब आनंद हो रहा है। रानियों ने सोचा एक दिन हमको महल में मिलने नहीं आए, बाकी जो रानियां थी छोटी रानी के वहां राजा इतने खुशी खुशी होके जाते, सर्वत्र बातें फैल रही है, आनंद ही आनंद बरस रहा है। छोटी रानियां कहती है अगर ऐसा कीर्तन शायद हम भी करें तो हो सकता है राजा हमारे वहां भी आ जाए। अब बात शुरू हुई थी देखा देखी से, लेकिन अपने पति को प्रसन्न करने की चाह भी थी हृदय में, उसी बहाने राजा हमको भी मिलेंगे, हमारे यहां भी आएंगे, बातचीत होगी प्रेम से। छोटी रानियों ने भी उसी प्रकार से अपने घर, सारी रानियों ने अपने अपने महलों में अपना अपना निज मंदिर बनाया, भगवान के विग्रहों की स्थापना की और वहां भी खूब कीर्तन शुरू हो गया। अब राजा को समाचार मिला कि आपकी जो दूसरी दूसरी रानियां थी उनके वहां पर भी इस प्रकार की सेवा पूजा हो रही है और वहां पर भी इस प्रकार का कीर्तन आनंद हो रहा है। अब ये समाचार जब राजा को प्राप्त हुआ तो राजा वहां पर भी कीर्तन देखने के लिए चला गया। वहां भी राजा ने देखा कि आनंद बहुत है, रानी को उत्साह आ गया, अच्छा राजा आ जाएगा, बंद नहीं करना फिर, तो हो सकता दोबारा भी आ जाए। फिर दूसरी रानी के वहां गए, तीसरी रानी के वहां गए, राजा देख रहे सर्वत्र ही भजन ही भजन हो रहा है, भजन ही भजन हो रहा है। ये देख के क्या हुआ, लोगों ने देखा कि राजा की सारी रानियां इतनी तन्मयता से कीर्तन कर रही है, हम नगरवासी क्या कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति के घर में कीर्तन शुरू हो गया। फिर नारद मुनि ने आके देखा तो नारद मुनि क्या देखते, एक अकेले अम्बरीश महाराज राज्य में कीर्तन करते थे, अपने महल में अपना सेवा पूजा करते थे। अम्बरीश महाराज जी से ये आग फैली उनकी छोटी रानी में, वहां से बाकी रानियों में, वहां से घर घर में, घर घर में हरि भक्ति फैल गई, आनंद ही आनंद हो रहा है। नारद जी जैसे वैष्णव लोग भी आके वहां भ्रमण करके आनंद का अनुभव कर रहे, क्या राज्य है, तो वैकुंठ है समान। तो रानियों ने देखा देखी की और देखा देखी में भी क्या हो गया, भक्ति लग गई। पीछे इच्छा भी थी ना कि अपने पति को प्रसन्न भी तो करना है। एक स्वपच बड़ा हीन प्रकृति का व्यक्ति, उसने एक बार कठेर बाहर बालकनी में खड़ी हुई राजा की जो राजकुमारी थी ना उसको देख लिया, इतनी सुंदर राजकुमारी को देख के कहता है कुछ भी हो बस इसको प्राप्त करना है मुझे। झाड़ू पोछा लगाने वाला गली में स्वपच, और वो कहता है राजकुमारी को प्राप्त करना है, कौन राजा कराएगा शादी। अब उसको तो खाना अच्छा नहीं लग रहा है, उसको तो नींद नहीं आ रही है, परेशान हो गया, दिन दिन भर रात रात भर जागता रहता है, बीमार जैसा हो गया। धर्मपत्नी आके पूछती क्या हो गया, बता नहीं रहा है। धर्मपत्नी बार बार पूछती है कि क्या हो गया, कुछ तो बताओ। कहते मैंने राजकुमारी को जब से देखा है ना तब से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, बस मुझे तो राजकुमारी चाहिए। अब ये कैसे संभव है, अपने पति को प्रसन्न करने के लिए धर्मपत्नी राजकुमारी के पास प्रस्तावना लेकर चली गई कि हमारे पति की यह अवस्था हो गई है, बस आपको देखा है तब से आपको प्राप्त करने की चीर अभिलाषा है उनकी, आप कुछ तो उपाय बताइए। राजकुमारी ने कहा कि प्राप्त तो कर सकते हैं, उपाय बताती हूं मैं। उनको बोलो कि राज्य के बाहर जो जंगल है वहां जाए, भगवान की मूर्ति पधराए और वहां पर अमुक महीनों तक लगातार प्रभु सेवा करते रहे और फिर बाद में मैं उनको स्वीकार करूंगी। राजकुमारी ने भगवान से प्रार्थना करके रिस्क लिया, ये तो चले गए राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए। अब उसको प्राप्त करने की चाह में भगवान की जो सेवा है ना बड़ी तन्मयता से करने लगे। अब एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, करते करते बात नगर तक पहुंच गई, व्यक्तियों के घरों तक पहुंच गई, आखिर में महल तक पहुंच गई। एक जंगल में व्यक्ति भजन जो कर रहा है, इतना वैराग्य अवस्था में भजन कर रहा है ना, राजकुमारी को मैसेज समाचार पहुंच गया कि कौन है। उसने पिताजी से अनुमति लेके मैं दर्शन करके आती हूँ और अनेक प्रकार के खाने पीने के पदार्थ लेकर पहुंच गई जंगल में, जाकर रख दिए, उसको तो कोई ध्यान नहीं, वो तो अपने काम में व्यस्त है। राजकुमारी ने कहा, सुनिए, मैं राजकुमारी जिनको आप प्राप्त करना चाहते थे, आंखें खोलिए, वो तो उसको तो कोई ध्यान नहीं, वो अपने काम में लगा हुआ है। राजकुमारी ने वहां जो एकत्रित थे सबको वहां से दूर हटाया, आप जरा थोड़ा दूर हो जाइए यहां से। फिर राजकुमारी ने उसको सचेत किया, मैं वही राजकुमारी जिसको आप प्राप्त करना चाहते थे। उसने देखा, लेकिन अब क्या फायदा, अब मुझे कोई आसक्ति नहीं, मुझे कोई आकर्षण नहीं है। ये प्रभु को मैंने देखा ना जब से, तब से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा अभी, लेकिन हाँ, प्रणाम किया, आप मेरे गुरु तो हैं, यहाँ तक आप ही ने मुझे पहुँचाया था, लेकिन आगे मुझे और कोई अभिलाषा नहीं है। तो कुछ और प्राप्त करने के लिए गए थे ध्रुव महाराज जी की तरह, लेकिन कुछ और ही प्राप्त कर गए थे। इच्छा कुछ और थी, लेकिन तीव्र वजन में इच्छाएं भी मर जाती है, प्राप्त तो कुछ और हो गया। तो इस तरीके से व्यक्ति कभी कभी शुरुआत की अवस्था में पूर्ण शुद्ध ना हो, लेकिन अच्छे भावना से भजन करता रहे किसी के मार्गदर्शन में, तो शुद्ध भावना जाग भी जाती है। तो बाकी रानियों ने अपने पति को प्रसन्न करने के लिए, अपने पति को महल में बुलाने के लिए सेवाएं पूजा शुरू की थी, लेकिन चमत्कार ये हो गया कि देखते देखते उनके हृदय में भी ऐसा रंग लग गया ना कि अभी तो उनको भगवान से ही सरोकार है, अमरीश जी आए तो ठीक और ना आए तो भी ठीक, अभी उनका सरोकार से भगवान से ही रह गया। तो इस प्रकार से महाराज अमरीश जी की कृपा से उनके संपूर्ण राज्य में हरि भजन दिन दिन रात रात हरि कीर्तन शुरू हो गया। तो ऐसे महान संत जहाँ पर भी प्रकट होते हैं ना, अनेक अनेक लोगों का उद्धार करते हैं, अनेक अनेक लोगों को भक्ति में लगाते हैं। इसलिए अमरीश जी जैसे वैष्णव को वेदव्यास जी ने भागवत में स्थान दिया है, उनकी कथा को वर्णन किया है। तो आज हम यहीं पर विराम लेते हैं और महाराज अमरीश जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से हमारी भी नवदा भक्ति में दृढ़ बुद्धि लगी रहे और ये पूरा जीवन हम भक्ति में व्यतीत करते हुए शरीर का त्याग करें, ऐसे ही उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। और वैष्णव, अनंत अनंत वैष्णव के चरणों में भी प्रार्थना है कि वैष्णव की कृपा से ही जिसको भी भक्ति मिली है वो वैष्णव की कृपा से ही मिली है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि भक्ति की चाह भगवान के चरणों में रखते हैं ना, वो तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चाह भक्तों के चरणों में रखनी चाहिए भक्ति प्राप्त करने की, तो भक्ति शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम मास के श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।